الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اچھا، سورة النجم کی تفسیر ہم پچھلی کلاس کے اندر پڑھنی شروع کر چکے تھے، معرف القرآن کی جلد نمبر 8 سے. تو اس میں سب سے پہلے تو ترجمہ تھا ان آیات کا 1 سے لے کر کے 18 تک، جو کہ تھا جس کا خیال ہے کہ ہم نے پورا پڑھ لیا تھا پچھلے ہفتے کی کلاس میں. تو معارف القرآن میں جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین کی ہوئی تفسیر ہے، تو اس میں حضرت نے جو ترجمہ استعمال کیا ہے وہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا استعمال کیا ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے، اور برصغیر کے اندر انگریزوں کے خلاف جو جدوجہد آزادی تھی اس کے اندر بہت بڑھ چڑھ کر کے ان کا نام آتا ہے. انہوں نے بہت حصہ لیا اور حتیٰ کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں چلائیں، بڑی بڑی تحریکوں کے اندر جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کیا، اور اس کے سزا میں پھر ان کو جلا وطن بھی کیا گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ظاہر ہے کہ اور بھی زیادہ پیچھے کا زمانہ تھا، تو اس وجہ سے ان کی جو یعنی ان کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر ہمیں مشکل الفاظ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت لمبا عرصہ گزر چکا، 100 سال تو خیر کیا، 150-200 سال تقریباً ہو گئے ہیں، تو زبان کے اندر الفاظ کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا بدل جاتا ہے. تو ترجمہ اس وجہ سے سمجھنا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد خلاصہ تفسیر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، کہ ترجمے کے بعد ہر آیات کا پھر خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں. تو خلاصہ تفسیر جو ہے وہ پھر حضرت نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے لیا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نا انہوں نے بالکل شروع میں لکھ دی ہیں معروف القرآن کے، کہ میں نے ترجمہ وہاں سے لیا اور میں نے خلاصہ تفسیر جو ہے وہ اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے لیا. ٹھیک ہے، اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی آج سے کافی پہلے کا زمانہ ہے، یعنی 100-125 سال پہلے کا زمانہ. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے، جو ان کے الفاظ استعمال کیے ہوئے، ان میں بھی کبھی کبھی کچھ ایسی مشکل باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کو پھر سمجھانے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. اگرچہ کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کری ہے کہ مشکل الفاظ کو جو ہے وہ تھوڑا سہل کر کے بیان کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو مضامین ہیں، جو دقائق ہیں، جو گہری گہری باتیں ہیں، تو ان کو تو نہیں تبدیل کیا نا انہوں نے. تو یہ عاجز سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کلاس میں کیوں دے رہا ہے، اس کی وجہ ایک تو یہ ریمائنڈ کروانا بھی کہ بھئی یہ ہمارے اکابرین ہیں اور ہم ان کی لکھی ہوئی باتیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ناموں سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، ان کے کارناموں سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آج جو ہم نے خلاصہ تفسیر پڑھنی شروع کرنی ہے، تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسی زبردست گہری باتیں اور نکات لکھے ہیں کہ جن کو پڑھ کر کے نا بس اش اش کرنے کا دل چاہتا ہے. زبردست تفسیر لکھی ہے ان شروع کی آیات کی، بظاہر جو ہے وہ ان کے اندر کوئی ایسی تفصیل نظر نہیں آتی، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا یعنی ان کی گہرائی کو کھولا ہے. یہ ہمارے قابلین ہی کی شان ہے کہ وہ ایسی چیزیں اس طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں. بہرحال خلاصہ تفسیر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں ان آیات کی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سورت کے اندر وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى, رائٹ, یعنی قسم کھائی واو کے ذریعے سے کہ قسم ہے ستارے کی. ٹھیک ہے, تو اس میں لکھتے ہیں حضرت یہاں پر کہ قسم ہے ستارے کی, اِذَا هَوَى, جب وہ غروب ہونے لگے. ٹھیک ہے, تو ہوا کا ترجمہ یہاں پر جو ہے وہ غروب ہونے سے, یعنی وہ ستارہ جو ہے نا, یہ اگرچہ کہ یہ سٹارز ہیں, یہ پلانٹ نہیں ہیں, سٹارز ہیں, تو اگرچہ کہ سٹارز کو اگر آپ آسمان پہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی موو نہیں ہوتے. پلانٹس جو ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ موو ہوتے آپ کو نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کا اتفاق ہوا ہو پلانیٹیریم وغیرہ جیسی جگہ پہ جانے کا, یا یہ کہ آپ نے کچھ ایسی سائنس فکشن سائنس ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھی ہوں, تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. تو لیکن ستارے کی موومنٹ جو ہے نا وہ بھی ہوتی ہے, لیکن چونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ دور ہیں اس وجہ سے ان کی موومنٹ جو ہے نا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ستارے موو ہوتے ہیں. تو یہاں پر جس ستارے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو باقاعدہ جو ہے وہ موومنٹ جو ہے نا اس کی نوٹس کی جا سکتی ہے. تو وہ باقاعدہ طلوع ہوتا ہے, یعنی آسمان پر نظر آنا شروع ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ تھوڑا سا موو کرتا ہے, حتیٰ کہ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب کہ گویا کہ وہ طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے, سوری طلوع نہیں, غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی باقاعدہ اس کا طلوع ہوتا ہے, جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا غروب بھی ہوتا ہے, جس طرح سے سورج کا غروب ہوتا ہے. ہمیں سورج کا غروب کیوں اتنی آسانی سے طلوع اور غروب نظر آتا ہے؟ کیونکہ سورج ہم سے بہت زیادہ قریب ہے دوسرے ستاروں کی بنسبت. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم کھائی جب کہ وہ غروب ہونے لگے, یعنی اس کی اس حالت کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بالکل یعنی جو اس کا زینتھ پوائنٹ ہوتا ہے, بالکل یہ اپنے بلندی پر ہوتا ہے, اس وقت کی قسم نہیں کھائی, اور نہ اس کے طلوع ہونے کے وقت کی قسم کھائی, بلکہ اس کے غروب ہونے کے وقت کی قسم کھائی. اب اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نا تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی کوئی بھی ستارہ ہو, اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی, اور اس قسم میں مضمون جواب قسم ما ولا صاحبکم وما غوا کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے. کیا مطلب اس کا کہ پچھلی کلاسوں میں بھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی کوئی قسم کھاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اس قسم کے کھانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ اصل میں کوئی بہت اہم بات بیان فرمانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کو نا ہمارے نظروں میں اور بھی زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قسم کھانے سے بات اور زیادہ محکم ہو جاتی ہے, اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے نا. جیسے کہ ہم کسی سے بات کریں کہ کسی کو ہم یقین دلانا چاہیں کہ بھئی ہمیں آپ کا بڑا خیال ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جی ہمیں آپ کا بڑا خیال ہے, لیکن ہم یہ اگر کہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں آپ کا بڑا خیال ہے, تو اب اس شخص کی بھی ذرا کان کھڑے ہو جائیں گے نا, ہاں کہ یہ لگتا ہے کچھ واقعی سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انسان کی ایک طبیعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ قسم کے ذریعے سے نا وہ زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہماری طبیعت بنائی, اور پھر ہماری طبیعت کے مطابق جو ہے وہ ہم سے کلام فرمایا. ٹھیک ہے, تو جس مقصد سے قسم کھائی جاتی ہے اس مقصد کو جواب قسم کہتے ہیں, جواب قسم. تو یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے, کیونکہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا, کہ تمہارا صاحب جو ہے وہ نہیں بہکا اور نہ ہی وہ بے راہ چلا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب قسم کا جواب قسم کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہوتا ہے, ایسے ہی بے جوڑ قسم نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ, بلکہ جوڑ والی قسم کھاتے ہیں. کہ جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے اس بات پر کہ بھئی تم اپنے پروردگار کے ساتھ وفادار کیوں نہیں ہوتے, تم اپنے پروردگار کے ساتھ وفادار ہو, ہے نا, تو اب اس بات کو کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی, अगर आप में से कोई बताए, वफादारी का सबक देने से पहले अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई, किस चीज की कसम खाई? किसी के जहन में अल्लाह ताला ने किस चीज की कसम खा करके अपनी मखलूक में से, किस मखलूक की कसम खा करके अल्लाह ताला ने वफादारी याद दिलाई हमें? जी है किसी के जहन में? जो आलिमात हैं उनसे गुजारिश है कि वो दूसरों को पहले मौका दें, अगर किसी को जवाब पता हो तो। कौन सी चीज वफादारी के लिए मशहूर है? हॉर्स, एग्जैक्टली, ठीक है ना, घोड़ा। ये वफादारी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, अगरचे कि कुत्ता भी वफादारी के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन कुत्ते के अंदर एक थोड़ी सी, एक तो वो यानी एक कराहियत भी होती है दीन इस्लाम के अंदर कुत्ते के साथ, और दूसरा ये कि कुत्ते की वफादारी जो है ना वो बड़ी महदूद लेवल की होती है। घोड़े की वफादारी उस हद तक जाती है कि वो मैदान जंग के अंदर जा कर के नेजों और तीरों के सामने भी वफादारी नहीं छोड़ता अपने मालिक की। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कसम खाई, वल आदियात ज़बहन फलमूरियात कदहन, ये सारी घोड़े की हालात हैं। ये आदियात एक खास घोड़े की हालत को कहते हैं, मूरियात भी घोड़े की एक खास हालत को कहते हैं। तो भाई वफादारी का खास यानी ताल्लुक है घोड़े की वफादारी के साथ, इस वजह से वफादारी की बात करने से पहले घोड़े की कसम खाई, है ना। तो कसम का ताल्लुक जवाब कसम के साथ होता है, सही है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर जो कसम खा रहे हैं सितारे की, तो क्यों सितारे की कसम खाई? भाई यहां पे घोड़े की कसम क्यों नहीं खाई, यहाँ पे सूरज की, चांद की, या यहाँ पर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फों की कसम क्यों नहीं खाई? भाई वजह है उसकी, वजह ये है कि सितारा जबकि वो गुरूब हो रहा हो ना, इसकी खास मुनासबत होती है कि रास्ते से नहीं हटना, अपने रास्ते पर बिल्कुल ठीक ठीक चलते रहना, ये सितारे की खासियत होती है। ठीक है, तो अब ये फरमा रहे हैं कि इस कसम में मजमूने जवाब कसम जो कि क्या है, मा गल्ला साहिबुकुम व मा गवा के साथ एक खास मुनासबत है, यानी जिस तरह सितारा तुलू से गुरूब तक इस तमाम तर मुसाफत में अपनी बाकायदा रफ्तार से इधर उधर नहीं होता, इधर उधर नहीं होता है ना, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र भर ज़लाल व गवायत से महफूज हैं। ज़लाल गुमराही, गवायत का मतलब भी आगे बल्कि लिखा हुआ भी है कि किसी गलत रास्ते के ऊपर, किसी गलत रास्ते को सही समझ करके चलना शुरू हो जाना, इसको गवायत कहते हैं। तो आप भी जो है ना बिल्कुल सितारे की तरीके से ठीक ठीक रास्ते के ऊपर चल रहे हैं और महफूज हैं गलतियों से। और नीज इशारा है, नीज का मतलब इन एडिशन, एडिशनली, ठीक है, और एडिशनली इशारा है इस तरफ कि जैसे नजम से हिदायत होती है। लोग, आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि जो रेगिस्तानों में ट्रैवल किया करते थे लोग, तो वो अपने रास्ते की तयीन सितारों को देख करके किया करते थे। ठीक है ना, अब तो हमारे पास GPS होता है या जो है मैप्स होते हैं, है ना, तो उनको देख करके हम अपने रास्ते का तयीन, यार ये कि रास्ते के अंदर जो है वो साइंस लगे हुए होते हैं, उनको देख करके हमें पता चलता है। तो अब तो सितारों को रीड करना इंसानों को यूजली आता ही नहीं है, सिवाय इसके कि जिन्होंने बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्टडीज करी हो, उनको पता होगा। ठीक है, लेकिन पुराने जमाने में तो लोग सितारों के जरिए से रास्ते की हिदायत हासिल किया करते थे कि भी हमने किधर जाना है। ठीक है, तो यही फरमा रहे हैं कि जैसे नजम से हिदायत होती है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बवजह अदमे ज़लाल व अदमे गवायत के हिदायत होती है, क्योंकि आप किसी को गलत रास्ते की तरफ नहीं गाइड कर सकते, गलत रास्ते की तरफ गाइड नहीं करते, आपका अपना रास्ता भी सही है और आप दूसरों को गाइड भी बिल्कुल ठीक रास्ते की तरफ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सितारा लोगों को बिल्कुल सही सही रास्ता बताता है। ठीक है, देखें कितनी जबरदस्त मुनासबत यहाँ पर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने एक्सप्लेन करके बताई है हमें, है ना। अच्छा, और फरमाया है कि और चूंकि सितारों के वस्ते समा में होने के वक्त किसी सिमत का अंदाजा नहीं होता, वस्ते समा यानी जब आसमान के बिल्कुल वस्त में, बिल्कुल दरमियान में जब सितारा होता है, तो उस वक्त आप सिमत नहीं बता सकते उस सितारे की, सितारे को देख करके। मिसाल के तौर पर हमारा सितारा कौन सा है? सूरज। ठीक है, तो सूरज जो है वो जब बिल्कुल जेनिथ पे होता है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, तो उस वक्त आप उस सूरज को देख करके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं बता सकते, है ना? लेकिन जब वो तुलू हो रहा होता है तो तुलू के टाइम पे आप बता सकते हैं कि भाई सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो सन जो है चूंकि इस डायरेक्शन से राइज हो रहा है, इस वजह से ये मशरक वाली डायरेक्शन है, और जब वो गुरूब हो रहा होता है उस वक्त आप देख करके बता सकते हैं कि जिस तरफ ये गुरूब हो रहा है यही मगरब वाली डायरेक्शन है। तो पाकिस्तान इंडिया से लोग, अगर आपके पास कोई कोई वो कॉम्पस ना हो और आप किसी रास्ते में हो और आपको मालूम करना हो कि भाई मैंने कहाँ किस तरफ कबला है, तो आप सूरज को देखेंगे कि सूरज जिस डायरेक्शन में गुरूब होता हुआ आपको नजर आ रहा है ना, उस तरफ मैंने रुख करके नमाज पढ़नी है, क्योंकि किबला जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में है। उसी तरीके से जब हम अमेरिका में होते हैं, अमेरिका में तो जाहिर है वहां तो मुस्लिम कंट्री भी नहीं है, और कुछ सालों पहले तक तो GPS वगैरह कुछ नहीं होता था लोगों के पास, तो हम जब नमाज पढ़ा करते थे स्पेशली एयरपोर्ट के ऊपर, भाई भाई पता नहीं कि किबला किधर है, एयरपोर्ट पे पहुंचे। अब एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी इतनी बड़ी होती है कि आपको अंदाजा ही खत्म हो जाता है कि क्या क्या कहाँ पर खड़े हुए आप। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे, हम जाते थे किसी से जाकर के पूछते थे, वो जो स्टाफ होता था, कि भाई वी नीड टू प्रे, तो कैन यू टेल अस इन विच डायरेक्शन द सन सेट हियर। ठीक है ना, सूरज किस तरफ गुरूब होता है। तो अब चूंकि वो रोजाना वहां पे काम कर रहे होते हैं तो उनको फिर भी कुछ अंदाजा होता है, या कुछ सोच करके उनको पता चल जाता है कि हाँ सूरज इस डायरेक्शन में गुरूब हो रहा है। तो अब उससे हमें पता चल जाता था कि ईस्ट इस डायरेक्शन में है। जब ईस्ट का पता चल जाता था तो फिर हम ऑटोमेटिकली ईस्ट से जो है वो लेफ्ट साइड पे सोचते थे कि जी नॉर्थ जो है वो लेफ्ट साइड पर होगा, जिस तरफ ईस्ट है उससे लेफ्ट पर नॉर्थ होगा। ठीक है, और नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान नॉर्थ ईस्ट होगा। तो अमेरिका से जो किबला है वो हमें ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में किबला होता है। तो जब सूरज के गुरूब होने का एक दफा पता चल गया तो किबले का भी पता चल गया कि जी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हम अपना मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ लें, तो नमाज हमारी हो जाएगी किबले के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कब पता चलता है, ये जवाल के टाइम पे, ये बल्कि जिसको जोहर का वक्त कहते हैं ना, जोहर का वक्त जिस वक्त शुरू होता है उस वक्त पता नहीं चलता, इसलिए कि उस वक्त सूरज बिल्कुल आसमान के वस्त में है। ठीक है, तो ये पता चलाने के लिए या तो तुलू का वक्त हो या गुरूब का वक्त हो, तब आपको डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, तो इस वजह से फरमाया कि चूंकि सितारों के वस्ते समा में होने के वक्त किसी सिमत का अंदाजा नहीं होता, इसलिए उस वक्त सितारे से रास्ते का पता नहीं लगता। इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें कैद लगाई गुरूब के वक्त की, वन नजम इदा हवा, कि अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं सितारे की जब वो गुरूब हो जाए, क्योंकि गुरूब के वक्त में उससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं, गुरूब के वक्त में डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है ना, और मकसद कसम खाने का है कि नबी अलैहिस्सलाम से तुम डायरेक्शन पता कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी का रुख किस तरफ होना चाहिए, है ना, तुम्हारी जिंदगी किस सिमत में चलनी चाहिए। तो ये नॉलेज, ये इल्म तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम से मिलेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर नजम की कसम खाई जिस वक्त वो गुरूब हो रहा हो। अब यहां पर सवाल ये होता है कि भाई डायरेक्शन तो आप तुलू होने के वक्त की भी से भी बता सकते हैं, जैसे अभी बात हुई ना कि तुलू होने के वक्त से आप ईस्ट की डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वह नजम इजा हवा ही क्यों का, गुरूब होने के वक्त की कसम क्यों खा रहे हैं। वह नजम इजा तला, कि भाई कसम खाता हूं मैं सितारे की जब वो तुलू हो रहा हो, ये क्यों नहीं कहा। बात समझ में आ रही है कि तुलू के वक्त की कसम क्यों नहीं खाई अल्लाह ताला ने। अब उसका जवाब दे रहे हैं, यानी कि तालिबे इल्म होता है जब वो बात को गौर से सुनता है ना, तो फिर उसके जहन के अंदर सवालात पैदा होते हैं। ये एक अच्छे तालिबे इल्म की निशानी होती है कि एक अच्छा सवाल उसके जहन में पैदा होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो गौर से बात सुन रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो तालिबे इल्म के जहन में सवाल पैदा होता है कि भाई तुलू के वक्त की अल्लाह ताला ने कसम क्यों नहीं खाई। ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस जवाब को खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गो قرب من الأفق، طلوع کے وقت بھی ہوتا ہے، یعنی افق کے قریب جو ستارہ ہوتا ہے نا وہ تو طلوع کے وقت بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ ڈائریکشن بتا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن غروب میں یہ بات زیادہ ہے، یعنی غروب کے وقت میں ڈائریکشن کو پتا کر لینے کی اہمیت زیادہ ہے. کیوں؟ کہ اس وقت طالبان اہتداء اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، اس خیال سے کہ اگر استدلال میں ذرا توقف کیا پھر غائب ہو جائے گا. اگر آپ کے بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے نا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتنی گہری بات فرما دی ہے، ٹھیک ہے، کتنی گہری بات فرما دی. اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی بات نہیں، ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کسی کو نا ڈائریکشن کا پتا کرنا ہے کہ بھائی میں یعنی ایسٹ کے ڈائریکشن کی طرف ٹریول کروں کہ میں ویسٹ کی ڈائریکشن کی طرف ٹریول کروں، ٹھیک ہے. تو اب وہ سورج کو طلوع ہوتا دیکھ کر کے نا یہ پتا کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی چونکہ ادھر سے یہ طلوع ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ایسٹ جو ہے نا وہ اس ڈائریکشن میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے جیسا سست آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کہے کہ یار بس میں آرام سے ناشتہ واشتہ کرتا ہوں پھر میں سوتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کے پھر ڈائریکشن پتا کر لوں گا سورج کو دیکھ کر کے، پھر میں اپنا سفر شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو طلوع کے وقت کی نا اس کے ذہن میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جو سورج طلوع ہو رہا ہے نا تو ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو یہ سورج آسمان پر ہی رہے گا، میں بعد میں دیکھ لوں گا اس کو، میں بعد میں دیکھ لوں گا اور بعد میں اپنی ڈائریکشن پتا کر لوں گا، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تو یہ طلوع ہو رہا ہے، ابھی تو اس کو بہت دیر تک آسمان پر رہنا ہے، ابھی تو اس نے بہت دیر تک آسمان پہ رہنا ہے، نظر آنا ہے. تو سینس آف ارجنسی نہیں ہوتا، سینس آف ارجنسی، ٹھیک ہے. لیکن جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو غروب میں انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی اب تو اس نے غروب ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد اندھیرا چھا جانا ہے، میں ابھی اس سے راستہ معلوم کر لوں، ابھی میں اس کو دیکھ لوں، اس سے سیکھ لوں. اگر ابھی نہیں سیکھا تو جلد یہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں اپنا راستہ نہیں معلوم کر سکوں گا. تو سینس آف ارجنسی کا تعلق جو ہے وہ طلوع کے وقت سے نہیں ہوتا بلکہ غروب کے وقت سے ہوتا ہے کہ بھائی اب تو یہ غروب ہونے والے ہیں، اب ان کا یعنی وہ عروج کا وقت ختم ہو چکا، اب زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب ان کو غنیمت سمجھو، ان کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، ہے نا. دیکھیں کیا زبردست تمثیل بیان فرمائی ہے کہ دیکھیں یہ جو طلوع کی قسم کیوں نہیں کھائی، کیونکہ غروب کے وقت جو ہے نا جو طالبان ہدایت ہوتے ہیں، ہدایت دیکھ یعنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں کسی بڑی شخصیت سے، تو وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، اس خیال سے کہ اگر استدلال کا مطلب ان سے ڈائریکشن حاصل کرنے میں، ان سے دلیل حاصل کرنے میں، دلیل سیکھنے میں، دلیل کہتے ہیں ڈائریکشن کی طرف پوائنٹ کرنا، رائٹ، ان سے ہدایت حاصل کرنے میں اگر ذرا توقف کیا، یعنی اگر ڈیلے کر دیا اس بات کو، تو پھر یہ غائب ہو جائیں گے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. بخلاف طلوع کے کہ اس میں بے فکری رہتی ہے کہ ہاں بھائی ابھی تو بڑا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے بڑا عرصہ رہنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو دیکھیں طلوع کا جو وقت ہوتا ہے نا اس میں نا پھر یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ طلوع کے وقت میں بڑے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، طلوع کے وقت میں بڑے لوگوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ غروب کے وقت میں جا کر کے لگتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ستارہ طلوع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے مبعوث کیا دنیا میں، کتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کری؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ٹھیک ہے نا. ٹوٹل تین لوگ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور کوئی نہیں مانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ठीक है ना, काफी अरसे तक सिर्फ तीन रोग रहे मुसलमान, ठीक है ना। तो ये तुलू का वक्त था, और फिर ये सूरज ऊपर जाता रहा, नबी अलैहि सलाम का सूरज ऊपर जाता रहा, हत्ता कि थोड़े थोड़े लोग शामिल होते गए, थोड़े थोड़े लोग शामिल होते गए। पूरे मक्का मुकरमा की 13 साल नबूवत वाली जिंदगी में टोटल 100 लोग के करीब मुसलमान हुए, 100 लोग टोटल, ठीक है ना। ये जो 100 लोग थे, ये बेशक इनमें से तीन तो सबसे अहम थे शुरू वाले बिल्कुल, लेकिन जितने भी आते गए मक्का मुकरमा की जिंदगी में, ये सारे के सारे कौन लोग थे, इनकी एक खासियत थी इनकी, कोई बता सकता है? मक्का मुकरमा जो लोग मुसलमान हुए, इनकी खासियत क्या थी? इनकी खासियत ये थी कि ये जो है ना बहुत मजबूत लोग थे, बहुत पक्के लोग थे। मिस्कीन सारे नहीं थे इनमें, बहुत अमीर कबीर भी थे, बहुत ताकतवर भी थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन, है ना, और बहुत सारे दूसरे भी लोग थे, बड़े बड़े अमीर कबीर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला कोई गरीब नहीं थे, बहुत अमीर थे, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट थे अपने जमाने के। तो ये लोग जो थे ना, ये खालिस थे और ये पक्के थे, इनके अंदर जर्रा बराबर भी कमजोरी नहीं थी, पक्के लोग थे ये, ठीक है ना। ये किस वक्त के लोग थे? जब नबी अलैहिस्सलाम का सूरज जो है वो तुलू हो रहा था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा गए, अब ये कौन सा वक्त शुरू हुआ? ये तुलू होने वाला वक्त नहीं था। मदीना मुनव्वरा में नबी अलैहिस्सलाम ने जाकर के हुकूमत की दाग बेल डाली, नबी अलैहिस्सलाम उस हुकूमत के अमीर बने, सुल्तान बने, बाकायदा एक मिलिट्री बनी, जिसने फिर जिहाद शुरू किया। बदर का जिहाद हुआ, उहद का जिहाद हुआ, और क्या क्या चीजें नहीं हुई, पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम बन गया। ये कौन सा वक्त था नबी अलैहिस्सलाम का? ये नबी अलैहिस्सलाम का जो सितारा था, ये उरूज के करीब पहुंच रहा था। अब मदीना मुनव्वरा की जिंदगी में जहां ईमान वाले थे, खालिस लोग थे, वहीं एक और भी कैटेगरी पैदा हो गई। वो कैटेगरी कौन सी थी? उरूज के वक्त में मदीना मुनव्वरा में नबी अलैहिस्सलाम का उरूज शुरू हो चुका था, ठीक है ना। अब वहां पे एक नई कैटेगरी पैदा हो गई। जी कौन सी वो कैटेगरी थी? जी मुनाफिकीन की कैटेगरी, जो कि जब सूरज टमटमा रहा होता है ना, तो अब ये झूठे लोग भी साथ मिल जाते हैं, है ना, कि भाई अब ये इनको सल्तनत मिली हुई है, तो अब हम भी कुछ फायदे उठा लें। तो ये मुनाफिकीन की कैटेगरी भी पैदा हो जाती है। मक्का मुकरमा में कोई मुनाफिक नहीं था, है ना, कोई मुनाफिक नहीं था वहां पे। जो कुरैश मुसलमान हुए वो पक्के लोग थे, बाद में जाकर के भी इनकी अहमियत अपनी जगह पर रही, है ना। और फिर उसके बाद जब नबी अलैहिस्सलाम का सूरज फिर आहिस्ता आहिस्ता गुरूब की तरफ आना शुरू हुआ, है ना, फतेह मक्का हुई, ठीक है, बिल्कुल पीक हो गया वो मामला। फिर उसके बाद जो है वो हज्जतुल विदा का मौका हुआ, 1,24,000 लोग। अब देखें, इदा जा नसरुल्लाह वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, फौज दर फौज नबी अलैहिस्सलाम के साथ लोग आकर के मिलना शुरू हो गए, ठीक है ना। ये बड़ी तादाद, ये वक्त कौन सा वक्त था? ये गुरूब का वक्त था, ठीक है। जब ये सूरत, जब सूरत नाजिल हुई, तो नबी अलैहिस्सलाम का गुरूब, ये इल्म सहाबा कराम को हो गया कि अब नबी अलैहिस्सलाम का वक्त जो है ना इस दुनिया में थोड़ा रह गया है ना, अब बेसत का मकसद पूरा हो गया, अब अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को वापस बुला लेंगे, ठीक है ना। तो ये गुरूब का वक्त था, ठीक है। तो ये वक्त वो होता है कि जिसके अंदर जो है ना, जो सितारा होता है वो सबसे ज्यादा हिदायत उसके अंदर से फैल रही होती है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम का भी यही मामला था। तो अल्लाह ताला ने वन्नज्म इदा हवा की कसम खाई, ठीक है, कि जब सितारा जो है वो गुरूब होने लगता है, और फिर लोगों को ये तलकीन की जा रही होती है कि गनीमत समझ लो इन लम्हात को, ये खत्म होने वाले हैं, बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं ये, ठीक है। तो वही फरमाया कि बखिलाफ तुलू के कि इसमें बेफिक्री रहती है, बस इसमें इस तरफ इशारा हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत हासिल कर लेने को गनीमत समझो और शौक से दौड़ो, ठीक है। आगे जवाब कसम है कि ये, यानी अब जवाब कसम की तफसीर शुरू कर रहे हैं, मा वल्ल साहिबुकुम वमा गवा, कि ये तुम्हारे हमा वक्त साथ के और सामने रहने वाले, ठीक है ना, साहिब। साहिब किसको कहते हैं? जो कि आपके करीब रहता है, आप उसके करीब रहते हैं, ठीक है। कभी तो हाथों में हाथ डाल करके चल रहे होते हैं, इतना जो है वो कुर्बत होती है। तो ये आपके, आप लोगों के हमेशा साथ रहने वाले हैं, जिनके जिनके आम अहवाल व अफआल तुमको मालूम है, तुम इनको पहले से जानते हो, ठीक है। मक्का मुकरमा वाले भी पहले से जानते थे, है ना, पैदाइश से पहले जो नबी अलैहि सलाम का खानदान था, ठीक है। अबू तालिब दादा को अच्छी तरीके से सारे के सारे जानते थे, और नबी अलैहि सलाम की पैदाइश से लेकर के 40 साल तक बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपसे सलम की पर्सनालिटी से, आपसे सलम की सिफात से मक्का मुकरमा वाले वाकिफ थे। लेकिन इवन मदीना मुनव्वरा वाले नबी अलैहिस्सलाम से अच्छी तरह वाकिफ थे, इतनी अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे जितनी अच्छी तरह मक्का मुकरमा वाले वाकिफ थे, लेकिन मदीना मुनव्वरा नबी अलैहिस्सलाम के का ननियाल था, राइट। और वहां के लोगों का आमदोरफ बहुत ज्यादा होती थी मक्का मुकरमा में, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि मदीना मुनव्वरा बहुत दूर उफ्तादा किस्म की चीज थी और मक्का मुकरमा और दूर कुछ कुछ आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, नहीं। दिस वॉज लाइक जैसे कि पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं ना कि जब नाम आता है शहरों का तो क्या, कराची लाहौर, कराची लाहौर, कराची लाहौर, कराची लाहौर। हालांकि कराची लाहौर के दरमियान अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस है, ठीक है ना, लेकिन जब भी कोई बात होती है या तो कोई कराची जाता है या कोई लाहौर जाता है, लाहौर वाले हर वक्त कराची जाते रहते हैं, कराची वाले हर वक्त लाहौर जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगरचे के डिस्टेंस बहुत लंबा है, लेकिन ये दो मेजर सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो अब कराची वाले लाहौर के हालात को अच्छी तरीके से जानते हैं, लाहौर वाले कराची के हालात को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जो था ना, ये डिस्टेंस तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा था, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन हालात दोनों के बहुत करीबी थे, मुस्तकिल की एक आमदोरफ्त चलती रहती थी इन दोनों शहरों के दरमियान। तो वहां के लोग भी नबी अलैहिस्सलाम को अच्छी तरीके से जानते थे, ठीक है। तो मा मा वल्ला साहिबकुम वमा गवा, कि तुम्हारे साहिब जो है ना वो फरमाते हैं कि जिनके आम अहवाल और अफाल तुमको मालूम है, जिनसे बशर्ते इंसाफ उनकी रास्ती और हक्कानियत पर तुम इस्तदलाल कर सकते हो। अगर कि तुम इंसाफ से इनको देखो तो इनका सीधे रास्ते पर होना और इनका हक पर होना तुम अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये पैगंबर ना राह हक से भटके और ना गलत रास्ते हो लिए, ठीक है। ये आयात नाजिल हो रही है, ठीक है, यानी हम तो जरा जरा अच्छी तरह से सिचुएशन को नहीं समझते ना, हम ये समझते हैं कि पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नबुवत का दावा किया होगा तो ना फिर वो बस आसमान से आवाज़ें आनी शुरू हो गई होंगी, है ना, आसमान से अल्लाह ताला की आवाज़ आती होगी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के जो लोगों को भौ भौ करते होंगे, है ना, वो डराते होंगे, भौ करके डराते होंगे, ठीक है ना। तो सारे लोगों को जो है ना वो इस तरीके से ना सारी चीज़ें पता चल जाती होंगी, है ना। और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मुखालफत करी तो इस वजह से उनको मार पड़ी, है ना। तो हम समझते हैं कि ये ऐसे मामला हो रहा होगा, ठीक है, कि आसमान से आवाज़ें आ रही होंगी और अजीब गरीब किस्म की यानी हरकतें होनी शुरू हो गई होंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज आ रहे होते थे, अल्लाह ताला की जो अल्फाज हैं, जो कलाम है अल्लाह ताला का, कुरान जो है ये कोई कोई पर्चे पे लिखा हुआ ऊपर से नाजिल नहीं हो रहा होता था, है ना, कोई ऊपर से जो है वो आसमान का टुकड़ा गिर करके नहीं आ रहा होता, जैसे कि हमने सूरह तूर के अंदर पढ़ा पीछे, ठीक है ना, ऊपर से आवाजें नहीं आ रही होती थी, बल्कि सब का सब जो है ना ये नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से लोगों के सामने आ रहा होता था, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला लोगों को जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ऐसे अल्फाज पहुंचा रहे होते थे जो कि उनको मुतवज्जे कर रहे हैं, अल्फाज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के जुबान मुबारक के वास्ते से, ठीक है ना। तो इस वजह से ना अल्लाह ताला यहाँ पे ऐसी ऐसी कस्में खा रहे हैं, ऐसे ऐसे बात फरमा रहे हैं, ऐसे ऐसे दलील फरमा रहे हैं, ठीक है, कि जिससे कि ये लोग मुतवज्जे हो जाए नबी अलैहिस्सलाम की बात की तरफ, ठीक है ना। उनके सामने तो ऐसा नहीं था ना, कि हमारे सामने तो गोया कि हमने जब से आंख खोली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के घर में आंख खोली है, मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद थी, वहीं वहां पे जाना शुरू किया या किसी से बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने हमें पहले से ही सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था और हम जो है मुसलमान हैं और नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और ये कलमा होता है और ये कुरान होता है और ये फरिश्ते होते हैं और ये कुरान होता है और ये सब, है ना। हमें तो ये चीज़ें जो है वो यानी पैदाइशी तौर पर मिली है ना, तो हमें इन चीज़ों का एहसास भी इसी वजह से कम है, इसकी अहमियत भी हमारे निगाह में कम है। लेकिन उस ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं था ना, एक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात थी, ठीक है ना, आप सल्लम की पर्सनालिटी थी, आप सल्लम ने सब कुछ करना था जो कुछ करना था, ठीक है। तो अब ना इस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो बात समझा रहे हैं कि भाई ये उनकी रास्ती और हकानियत पर ना तुम इस्तेदाल कर सकते हो, जरा गौर करके, गौर तो करो इनकी पर्सनालिटी के अंदर, सोचो तो इनके बारे में कि तुम कितना इन पे ट्रस्ट करते थे, ठीक है। तो ये ना राह हक से भटके हैं और ना गलत रास्ता हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो अल्फाज, जो जलाल का लफ्ज़ था ऊपर भी इस्तेमाल हुआ ना, जलाल और गवायत, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जलाल ये होता है कि बिल्कुल सीधा रास्ता, बिल्कुल रास्ता भूल कर खड़ा रह जाए, ठीक है ना, यानी बिल्कुल भूल गया, समझ में नहीं आ रहा किधर जाए, ठीक है ना, उसको जलाल कहते हैं। और गवायत किसको कहते हैं, ये कि गैर राह को राह समझ कर गलत सिमत में चलना शुरू हो जाए कोई, उसको गवायत कहते हैं, ठीक है, यानी किसी गलत रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाए। तो कहते हैं कि यानी तुम जो उनको दावाए नबूवत व दावत इलल इस्लाम में बेराह समझते हो, ये बात नहीं है, ठीक है ना। ये कुफारे मक्का जो है नबी अलैहिस्सलाम कहते थे कि तुम कहाँ से बन गए अल्लाह के नबी, अल्लाह को कोई और नहीं मिला नबी बनाने के लिए, ठीक है। तो इनको इख्तलाफ अल्लाह के होने ना होने पर नहीं था, इनको इख्तलाफ इस बात पर था कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये अल्लाह के नबी नहीं है। अगर ये अल्लाह के नबी होते हम जरूर इनकी बात मानते, लेकिन वो कहते थे ये तो है ही नहीं अल्लाह के नबी, हम कैसे माने इनकी बात, नाउज़ बिल्ला, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो अपनी तरफ से जो है वो इफ्तिरा कर रहे हैं इन बातों को जो कि ये कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह ताला का जो ये मैसेज है इसका मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं, पक्के नबी हैं आप। अच्छा, और ये फरमाया कि और ना आप अपनी नफसानी ख्वाहिश से बातें बनाते हैं, मा यंतिकु अनिल हवा, आप अपनी नफसानी ख्वाहिश से बातें नहीं बनाते। अब नफसानी ख्वाहिश, इंसान के अंदर एक नफ्स होता है, ठीक है, जो उसको ना बुराइयों की तरफ उभारता है, बुराइयों की तरफ पुश करता है, गोया कि ये हमारे अपने वजूद के अंदर एक चीज मौजूद है, एक एक रूहानी चीज मौजूद है, ठीक है। इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी, ठीक है ना, सूरह यूसुफ के अंदर ये आयत है कि बेशक जो नफ्स होता है ना वो तो गुनाहों की तरफ इंसान को पुश करता है, गुनाहों की तरफ बुलाता है, ठीक है। तो अब नफ्स की ख्वाहिश क्या होती है कि नफ्स की ख्वाहिश उससे फिर यानी ये होती है कि बस तुम गुनाह करो, तुम अपनी मर्जी को पूरा करो, एक्चुअली मर्जी पूरी करो अपनी, ठीक है। तो अब ये नफसानी ख्वाहिश से बातें बनाना, ठीक है, तो नफ्स जो होता है ना वो किसी एक किस्म का गुनाह नहीं करवाता कि बस जो है वो कोई बेहयाई वाला गुनाह, बस नफसानी ख्वाहिश का मतलब ये है कि इंसान बेहयाई के अंदर पड़ जाए, नहीं, बल्कि नफसानी ख्वाहिश जो होती है वो इंसान को पेट भरने के ऊपर भी लगा सकती है, यानी ये जो ओवर ईटिंग होती है या चटोरपन जिसको कहते हैं, ये चटोरपन जो होता है ना खाने पीने से जिसका ताल्लुक होता है, ये भी नफसानी ख्वाहिश की वजह से होता है, ठीक है। सिर्फ बेहयाई वाले जुर्म नहीं होते नफसानी ख्वाहिश की वजह से, बल्कि चटोरपन भी नफसानी ख्वाहिश की वजह से होता है, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, अब कोई कहे कि जी मैं तो कोई बेहयाई का काम नहीं करती, औरत माशाल्लाह हमारे अल्लाह का शुक्र है अभी भी हमारे मुआशरे में औरतों का निज़ाम ऐसा है कि बेहयाई की तरफ नहीं पड़ती, पड़ती हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो कहें कि नहीं जी मैं तो चूंकि बेहयाई का काम नहीं करती तो इस वजह से मैं तो कोई नफ्स की बात बात नहीं मानती। भाई अगर आप चटोरपन के मर्ज में मुब्तला है ना, तो ये भी नफसानी ख्वाहिश की वजह से। और फिर उसके बाद औरतें जिस चीज में ज्यादा पड़ती हैं, चटोरपन में भी औरतें ज्यादा नहीं पड़ती, उसमें मर्द ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन औरतें किस चीज में पड़ती हैं, बातें बनाना, बहुत ज्यादा बातें करना, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहना, ठीक है ना। तो अब ये कोई कहे कि मैं तो कोई ना तो बेहयाई का कोई काम करती हूँ, ना जो है ना मैं चटोरपन का कोई मेरे साथ मसला है, ठीक है ना, मैं तो बस बातें करती हूँ और लोगों का दिल खुश करती हूँ बातें करके, है ना, जरा 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 हंसी मजाक भी होना चाहिए। अब बिल्कुल ही जो है ना वो सड़ा हुआ चेहरा रखते रहना हर वक्त और ऐसी जो है वो नाराज बन करके रहने तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, इस वजह से मैं बातें करती हूँ ताकि लोग खुश रहें, ठीक है ना। तो भाई अगर आप बातें करती हैं लोग खुश रहें तो उसमें भी कुछ लिमिट्स होती होनी जरूरी है। ये बातें आपकी जो है ना ये झूठ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बातें आपकी गीबत नहीं होनी चाहिए, ये बातें आपकी किसी की इज्जत को खराब करने वाली नहीं होनी चाहिए, किसी पर तोहमत लगाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये इस तरह की बातें आप कर रही हैं तो ये भी नफसानी ख्वाहिश की वजह से हो रही है। कहने का मकसद ये है कि नफसानी ख्वाहिश जो होती है वो सिर्फ एक शक्ल की नहीं होती बल्कि बहुत सारी मुख्तलिफ शक्ल की नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्या फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, जुबान से कोई लफ्ज निकालना, नतका यंतिकु का मतलब जुबान से लफ्ज निकालना, ठीक है। तो जुबान से लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी नफसानी ख्वाहिश की वजह से नहीं निकालते थे बल्कि सिर्फ हक बात फरमाते थे, जो अल्लाह ताला से इजाजत है जिस बात के कहने की सिर्फ वो वाली बात फरमाते थे, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं कि ना आप अपनी नफसानी ख्वाहिश से बातें बनाते हैं, जैसे कि तुम लोग कहते हो इफ्तराहू कि इन्होंने तो अपनी तरफ से घड़ लिया इन बातों को, बल्कि इनका इरशाद निरी वही है, यानी जो ये इरशाद फरमाते हैं ना ये वही होता है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा अब ये वही का क्या मतलब कि अपनी बीवी से जो बातें कर रहे हैं, बच्चों से जो बातें कर रहे हैं वो भी वही है। भाई कोई भी बात गलत और बुरी तो वो नहीं करते, लेकिन वही जो है वो क्या है, जो यानी वही से यहाँ पे क्या मुराद है कि जो नबी अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के बारे में बताते हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम लोगों को आखिरत के बारे में बताते हैं, या पिछली जो कौमें थीं उनके अहवाल बयान फरमाते हैं, या जो नसीहतें करते हैं, ये सब का सब जो है ना वो अपनी तरफ से घड़ के नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमा रहे होते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को उन्हीं बातों को आगे बयान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब का सब जो है वो अल्लाह की तरफ से, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से इन चीजों को नहीं घड़ा हुआ है, ठीक है। वमा यंतिकु अनिल हवा, तो जैसा तुम लोग कहते हो इस तरह बल्कि इनका इरशाद निरी वही है जो उन पर भेजी जाती है, ख्वा अल्फाज की भी वही हो जो कुरान कहलाता है, ख्वा सिर्फ मानी की हो जो सुन्नत कहलाती है। ये भी थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी गहरी बात कही है, ठीक है, कि जो नबी अलैहिस्सलाम इस किस्म की नसीहतें फरमाते हैं ना ये सब का सब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आप ससुरों को बताया जाता है, ठीक है। तो इसको कुरान कहते हैं जो तिलावत के जरिए, तिलावत जिस जिस वही की जाती है उसको कुरान कहते हैं, और एक दूसरी वही होती है जिसकी तिलावत नहीं की जाती उसको हदीस मुबारका कहते हैं, ठीक है, कि ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं, हजारों लाखों की तादाद में हदीसें मौजूद हैं, ठीक है। वो सब का सब जो है वो वही है, ठीक है। एक और वही क्यों, जो नबी अलैहिस्सलाम के आदात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम करने का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें, हैबिट्स जिनको कहते हैं, ठीक है ना, ये भी वही है। इस वही को कुरान नहीं कहते, इस वही को हदीस नहीं कहते, इस वही को सुन्नत कहते हैं, ठीक है ना। जो नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहने का तरीका, घर में काम करने का तरीका, बीवियों से मुलाकात करने का तरीका, ठीक है ना, पड़ोसियों के साथ मुआमलात करने का तरीका, दुश्मनों के साथ मुआमलात करने का तरीका, दोस्तों के साथ मुआमलात करने का तरीका, ये सब का सब जो तरीके के शक्ल की चीजें होती हैं, हैबिट्स जिनको कहते हैं, आदतें जिनको कहते हैं, ये भी वही है। और इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सुन्नतें, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में इनको सुन्नत कहा जाता है। वैसे तो सुन्नत का लफ्ज जो है वो और भी ज्यादा तफसील इसकी की जा सकती है, लेकिन तो ये सब जो है ना जो जो मानी के एतबार से अल्लाह ताला के हुक्म है वो सुन्नत कहलाती है, ठीक है। तो कितनी किस्म की वही हो गई, एक हो गई वही मतलू जिसको कुरान कहते हैं, ایک ہو گئی وحی غیر متلو، متلو مینس تلاوت کی جانے والی چیز، تو وحی غیر متلو جس کو حدیث کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہو گئی جو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہیں، ان کو سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آسان الفاظ میں یہ تین آپ وحی کی کیٹیگریز لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ٹھیک ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. اچھا، اب چلے پڑھ لیتے ہیں، ویسے تھوڑا سا اور پھر کمپلیکس ہوتا چلا جا رہا ہے یہ، کہ اور خواہ وہی جزی ہو یا کسی قاعدہ کلیہ کی وہی ہو جس سے اجتہاد فرماتے ہوں، بس اس سے نفی اجتہاد کی نہیں ہوتی. اب اس لائن کو ذرا چھوڑ دیں، یہ بہت زیادہ پھر ایڈوانس لیول کی لائن ہو گئی ہے اس کے اندر. تو آگے فرماتے ہیں کہ اصل مقصود مقام نفی ہے کفار کے اس خیال کی کہ آپ خدا کی طرف غلط بات کی نسبت فرماتے ہیں. یعنی کفار جو بولتے ہیں کہ آپ غلط غلط باتیں کر رہے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں کرتے ہیں بالکل ٹھیک فرماتے ہیں. آگے وہی آنے کا واسطہ بتلاتے ہیں. اچھا، اب جو ہے نا وہ نیکسٹ بات شروع ہو رہی ہے. علمہ شدید القوا، کہ یہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ جی مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کا حکم ہے، تو یہ کس نے سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، علمہ شدید القوا، ایک سخت قوت والے نے یہ باتیں آپ کو سکھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کو ایک فرشتہ اس وحی کی من جانب اللہ تعلیم کرتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم کرتا ہے، جو بڑا طاقتور ہے، شدید القوا، شدید قوت والا ہے، اور وہ اپنی کوشش و محنت سے طاقتور نہیں ہوا. ذو مرہ، ذو مرہ کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرشتہ ہے نا، یہ نہیں کہ خوب اچھے اچھے کھانے کھا کر کے، ایکسرسائزز کر کے، ڈنڈ پیل کر کے یہ فرشتے صاحب جو ہیں وہ بہت طاقتور بن گئے، نہیں، بلکہ وہ پیدائشی طاقتور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ ہے، پیدائشی طاقتور. ذو مرہ کو کیا عجیب ترجمہ کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پیدائشی طاقتور ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک روایت میں خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنی طاقت کا بیان فرمایا کہ میں نے قوم لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کے قریب اس کو لے جا کر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جیسے کہ آپ کسی کسٹرڈ کے بول کے اندر ایک چمچہ اندر ڈال کر کے خوب سارا کسٹرڈ جو ہے وہ اس چمچے میں نکال لیں، اور پھر اس چمچے کو بہت اوپر لے جا کر کے نیچے یا پلٹ دیں، یا یہ کہ بس چمچہ جو ہے نا وہ بیچ نیچے سے جو ہے وہ سلائڈ کر دیں، تو وہ سارا کا سارا کسٹرڈ جو چشمے چمچے کے اندر آپ نے اٹھایا تھا نا، وہ سارا کا سارا کسٹرڈ جو ہے وہ نیچے آ کر کے گرے گا. ٹھیک ہے نا، تو بالکل اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی پوری بستی کو جو ہے نا وہ سکوپ آؤٹ کر دیا، زمین سے سکوپ آؤٹ اتنی گہرائی میں کیا کہ نیچے سے پانی نکل آیا، اور وہاں پر اب وہ ڈیڈ سی بن چکا ہے. ڈیڈ سی اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کہ سکوپ آؤٹ کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری کی پوری بستی کو. ٹھیک ہے، اور پھر اس بستی کو جو ہے نا وہ نیچے پلٹ دیا. اب جو یہ نیچے گرے ہیں، تو ظاہر ہے جب کسٹرڈ نیچے گرے گا تو اب اسی فارم میں تو آ کر کے نہیں چپک جائے گا نا جس فارم میں اس کو نکالا گیا تھا، بلکہ اب تو وہ بالکل بکھر جائے گا، ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گا وہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب وہ جو بستی قوم لوط کی تھی، جب وہ نیچے آ کر کے گری ہے، تو اب اس کے ریزے ریزے جو ہے نا وہ اس ایریے میں ٹوٹ ٹوٹ کر کے جو ہے وہ بکھر گئے. تو ڈیڈ سی جو ہے اس کے اندر ان کے آثار نظر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کی جو عمارتیں اور جو چیزیں ہیں نا وہ اندر آپ کو نظر بھی آ سکتی ہیں اگر وہاں پہ جا کر کوئی دیکھے. ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کی یہ طاقت ہے. ٹھیک ہے، تو رواہ فی التفسیر، تو تفسیر جہاں سے اس بات کو نقل کیا ہے وہ لکھ دیا. مطلب یہ کہ یہ کلام کسی شیطان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا کہ کاہن ہونے کا احتمال ہو. اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے جن کو کاہن کہا کرتے تھے، انہوں نے شیاطین کے ساتھ دوستیاں بنائی ہوئی تھیں، اور شیاطین ان کو نا آ کر کے کچھ خبریں دیا کرتے تھے جن میں کہ سچ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا تھا، جھوٹ بہت زیادہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو جنہوں نے شیاطین سے ایسے روابط بنائے ہوئے ہوتے تھے نا، ان کو کاہن کہا کرتے تھے. ये चीज ना उस मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा आम थी, जिसको कहते हैं ना जबान जुबान जदे आम, यानी अवाम की जुबान के ऊपर यही बातें हुआ करती थी कि भाई फलाना शख्स जो है वो काहिन है, उसने फलानी बात कही है, ठीक है ना। एक काहिना औरतें भी बहुत होती थी, तो वो काहिना औरत है, उसने ऐसी बात कही है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, इस हर वक्त ये, यानी दिस वॉज लाइक आजकल जैसे होता है ना कि फलाने अखबार में ये खबर आई और फलाने मीडिया के ऊपर ये खबर आई और फलाने चैनल में खबर आई। उस जमाने के चैनल्स ये थे, ये मीडिया आउटलेट्स थे उस जमाने के, काहिन काहिना, है ना। तो हत्ता के जब इनके दरमियान कोई कोई तनाज़ा होता था, कोई इशू होता था, तो उस इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए भी कभी कोई काहिन के पास जा रहा है, कभी कोई काहिना के पास जा रही है, जा रहे हैं लोग, ठीक है ना। ये सीरत के अल्हम्दुलिल्लाह क्लास जो चल रही है, तो उसमें इस तरह के बहुत सारे वाकयात हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ना ये चीज़ उस जमाने में बहुत ज्यादा लोगों की जुबान पर होती थी, काहिन काहिना। तो अल्लाह ताला ने ना फिर इस शक का भी जवाब दिया कि नबी अलैहिस्सलाम कोई काहिन नहीं है कि शयातीन से उनके ताल्लुकात हो नऊज़ बिल्लाह, और वहां से कुछ खबरें लेकर के लोगों को बता रहे हो, ठीक है। बल्कि ये जो खबरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, ये फरिश्ते के जरिए से आती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद शदीदुल कुवा क्यों कहा? बस ये कह देते कि भाई एक फरिश्ता आकर के खबरें देता है। शदीदुल कुवा इसलिए कहा कि कहते हैं कि शायद शदीदुल कुवा का जिक्र फरमाने में ये मकसूद हो कि इसका इहतमाल भी ना किया जाए कि शायद असल में तो फरिश्ता ही लेकर चला हो। यानी ये जो नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं लोगों को कि भाई मुझे तो फरिश्ता आकर ये खबरें देता है, तो अब लोग ये कहें कि नहीं ठीक है, फरिश्ता आता होगा तुम्हारे पास, लेकिन बीच में किसी शैतान ने फरिश्ते से ना कुछ लड़ाई वड़ाई करके ना इन खबरों को छीन लिया होगा, और फिर कोई शैतान लेकर के तुम्हारे पास ये खबरें आता है। यानी असल में तो फरिश्ता लेके चला था अल्लाह के पास से खबर, लेकिन बीच में शैतान ने फरिश्ते से वो खबरें छीन ली, और फिर तुम्हारे तक शैतान ने वो खबरें पहुंचाई, ठीक है ना। या फरिश्ते की जो के पास जो लिखी हुई कोई खबरें थी आसमान से, अल्लाह ताला ने उनको दी थी, तो किसी फरिश्ते ने, सॉरी किसी शैतान ने जाकर के ना उस किताब के अंदर जो है वो कुछ रद्दो बदल कर दिया, ठीक है ना। तो इस वजह से तुम्हारे पास तो शैतान ये खबरें लेकर के आता है। ये मक्का मुकरमा के जो काफिर थे वो आपसे सरम को इस तरह की बातें कहा करते थे, ठीक है ना, क्योंकि दिस वॉज लाइक द नॉर्म, नॉर्मल डिस्कशन ऑफ दोज टाइम्स। अब तो हमें जरा अजीब सी लगती है ना, क्योंकि अब उमूमी तौर पर हमारा ऐसे लोगों से वास्ता होता नहीं है, ठीक है। वैसे आजकल भी बहुत सारे जगहों पे कुछ लोग हैं जो कि इसी चक्करों में हर वक्त पड़े रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन जनरल जो शहर के लोग हैं पढ़े लिखे ज़रा, तो वो इस तरह की बातों से वाकफियत नहीं है हम लोगों की, ठीक है। इस वजह से हमें बड़ी अजीब सी लग रही होंगी ये बातें, लेकिन उस जमाने में तो ये बहुत नॉर्मल बातें थी, ठीक है ना। इस तरह की बातें करते थे, यहाँ भी वो काहिन है, उसके बाद फरिश्ता वो शैतान खबरें लेकर के आता है, और फरिश्तों और शैतान के दरमियान जो है वो कोई लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और शैतान गालिब आ जाता है या फरिश्ता गालिब आ जाता है, ये चलता रहता था इस तरह का, ठीक है। तो इसी के जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शायद असल में फरिश्ता ही लेकर चला हो, मगर दरमियान में कोई शैतानी तसरुफ हो गया, ये शैतान ने उस पैगाम को चेंज कर दिया। तो इसमें इशारा हो गया जवाब की तरफ कि वो नहायत शदीदुल कुवा है, शैतान की मजाल नहीं कि उनके पास भटक सके। फिर खत में वही के बाद खुद हक तआला ने इसके बेईन ही अदा कर देने का वादा फरमाया है, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ठीक है, कि ये जो कुरान फरिश्ते के जरिए से, बड़े ताकतवर फरिश्ते के जरिए से आप पे नाजिल हुआ है ना, अब इस कुरान को जमा करना और इस को पढ़वाना लोगों से या आपसे, ये भी हमारे जिम्मे, हम करवाएंगे, आप फिक्र ना करें इन सब बातों की, हम करवाएंगे आपसे ये सारी चीजें, ठीक है ना। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इन अलैना, हमारी जिम्मेदारी है जमअहू, इसको जमा करना, व कुरआना, और इसकी किराअत करवाना, ठीक है। आगे इस शुबे का जवाब है कि इस वही लाने वाले का फरिश्ता और जिब्राइल होना उस वक्त मालूम हो सकता है जब आप उनको पहचानते भी हों, ठीक है ना, कि भाई आप सस्म के ये भी तो कुछ बोल सके ना कि हाँ भाई मैंने इस फरिश्ते को जो है ना वो देखा भी है, सिर्फ ये नहीं कि वो खामोशी से आकर के जो है मेरे कान में कोई बात कह कह के चला जाता है और मैंने कभी उसको देखा भी नहीं, नहीं मैं उसको देख चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये तो आप सस्म उसी वक्त कह सकते हैं ना जब आप सस्म ने वाकई उस फरिश्ते को देखा हो, क्योंकि आप सस्म झूठ तो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वह बिल्फुक अला, ठीक है ना, कि नबी रसूल ने उस फरिश्ते को उफुक आला के ऊपर देखा भी था। तो अब उसकी तफसीर में लिखते हैं कि जब आप उनको पहचानते हो और पूरी सही पहचान मौकूफ है असली सूरत में देखने पर, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली सूरत पर देखा है? इसकी निस्बत फरमाते हैं कि हाँ, ये भी हुआ है, जिसकी कैफियत ये है कि चंद बार तो दूसरी सूरत में देखा, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास जो है ना, वो इंसानी शक्ल में आते थे, ठीक है, किसी इंसान की शक्ल। किताबों में लिखा हुआ है कि एक सहाबी थे हज़रत दाहिया कलबी रज़ी अल्लाह तआला, बहुत खूबसूरत सहाबी थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना अक्सर उनकी सूरत में आते थे नबी अलैहिस्सलाम के पास, ठीक है। तो दूसरी सूरत तो इंसानी सूरत होती थी, लेकिन फिर एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि वो फरिश्ता अपनी असली सूरत पर आपके रूबरू नमूदार हुआ, ऐसी हालत में कि वो आसमान के बुलंद किनारे पर था। एक रिवायत में उफुक शर्की से इसकी तफसीर आई है, यानी एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मशरक की तरफ जो होराइजन था ना, उस तरफ मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, ठीक है। और उफुक में दिखलाने की गालिबन ये हिकमत है कि वस्ते समा में देखना खाली अज मुशक्क़त व तकल्लुफ नहीं, ठीक है, यानी अगर बिल्कुल टॉप पर होते ये जिब्रील अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, तो अब आपको पता है ना, बिल्कुल ऊपर देखना जो है ना, उसमें गर्दन में भी तकलीफ होती है, और यानी एक बड़ी जरा एक डिफिकल्ट सी पोजिशन है बिल्कुल टॉप पर देखना, ठीक है। जबकि उफुक पर हो कोई चीज़ तो इंसान को कोई गर्दन भी ज़्यादा नहीं उठानी पड़ती और बहुत क्लियर विजन होता है। चांद जो है वो अमूमी तौर पर उफुक पर नजर आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है चांद को देखना, किसी को तकलीफ नहीं होती चांद को देखने में। रात के वक्त आप जरा छत के ऊपर खड़े होकर के चांद को देखें, तो वो एक तकलीफ दह पोजिशन नहीं होती कि चांद को देखने के लिए वो एकदम ऊपर अपनी गर्दन जो है वो ऐसी टेढ़ी करके ऊपर देख रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान के बिल्कुल टॉप पे नमूदार नहीं हुए, बल्कि जिस तरह से चांद उफुक पे नमूदार होता है और सब बहुत बेतकल्लुफ हालत में चांद को देखते हैं, उसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी ऐसे देखा नबी रसूल अलैहिस्सलाम ने। और आला क्यों कहा, उफुकन आला क्यों कहा, उफुकन अदना क्यों नहीं कहा? तो इसका जवाब दे रहे हैं कि आला में गालिबन ये हिकमत थी कि बिल्कुल नीचे उफुक पर भी पूरी चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर कोई चीज़ बिल्कुल नीचे हो ना, तो फिर आजकल तो बिल्डिंग्स बीच में आ जाती हैं, और पुराने ज़माने में बिल्डिंग्स नहीं होती थी, तो कोई पहाड़ी कोई टीला कोई चीज़ बीच में आ गई, तो भाई जो उफुक अदना के ऊपर चीज़ होगी ना, वो पूरी तरीके से आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। दरख्त कोई आ गया बीच में, तो उस वजह से आपको नीचे की चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो अगर ऊंची की तरफ हो, उफुक में ज़रा ऊपर की तरफ हो ना, तो वो चीज़ फिर बगैर रुकावट के आप उस चीज़ को देख सकते हैं ना, तो कोई पहाड़ इतना ऊंचा होता है, ना तो कोई दरख्त इतना ऊंचा होता है जो कि रास्ते में रुकावट बन सके, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया उफुक आला की तफसीर। अच्छा, फरमाया कि आलम गालबन ये हिकमत थी कि बिल्कुल नीचे उफुक पर भी पूरी चीज़ नज़र नहीं आती, इसलिए ज़रा ऊंचे पर नजर आए। और इस देखने का किस्सा ये हुआ था, अब इसकी पूरी वो यानी शान नुजूल या शान वरूद बयान फरमा रहे हैं कि एक्चुअली वाकया क्या हुआ था कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश की थी कि मुझको अपनी असली सूरत दिखलाओ। तो उन्होंने हिरा के पास, यानी गारे हिरा जो जबल नूर के अंदर है, जिसमें पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, तो हिरा के पास वह हसब रिवायत तिरमिजी मुहल्ला जियाद में वादा ठहराया, यानी हिरा के करीब ना एक मोहल्ला है मक्का मुकरमा का, जिसको जियाद कहते हैं, आजकल इसको अजियाद कहते हैं, ठीक है ना। गालिबन ये जगह थी जहाँ पे कि मक्का मुकरमा वालों के ना घोड़ों के अस्तबल थे, घोड़े रहते थे, अजियाद घोड़ों को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बहरहाल मोहल्ले का नाम पड़ गया जियाद। तो आपस में फिर इनके ये तय हो गया कि भाई आप फलाने दिन फलाने वक्त में जियाद के मोहल्ले में आ जाइएगा, वहां पर मैं आपको ना अपनी असल सूरत दिखाऊंगा। तो आप सरसन वहां तशरीफ ले गए, तो उनको उफुक मशरक में देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इनके 600 बाजू हैं और इस कदर फैले हुए हैं कि उफुक गर्बी तक घेर रखा है। ठीक है, तो ऐसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को नजर आए कि मशरक से लेकर के मगरब तक गोया के पूरा होराइजन जो है वो फिल कर दिया था जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वजूद ने। तो अब इतनी बड़ी चीज कोई ऐसे नजर आए तो जाहिर है कि असर तो होता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के गिर पड़े, ठीक है, यानी ऐसा असर हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम बसूरत बशर होकर आपके पास तस्कीन के लिए उतर आए। देखें, नबी अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देख करके, ठीक है, अपनी असल सूरत में। अच्छा, ये किधर थे? ये नबी अलैहिस्सलाम थे दुनिया में, ठीक है। तो दुनिया में बेहोश हो गए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असल सूरत में देख करके। अभी अभी असल में सारे जिसके जहन में बात आई है तो इस वजह से अभी आपके सामने बयान कर रहे हैं, वरना आगे जा करके असल में इसकी तकमील होती है। सिदरतल मुंतहा के ऊपर जा करके आगे जिक्र है, वहां भी जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल सूरत में देखा, वहां पे बेहोश नहीं हुए, यहां पे बेहोश हो गए, ठीक है। तो माहौल का असर होता है, वहां पे ओवरऑल एक अलग ही माहौल चल रहा था जब नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात में आसमानों पे ऑलरेडी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें देख चुके थे। 1,24,000 अंबिया को भी देख चुके थे जमीन के ऊपर, है ना, कि वो सारे के सारे अपनी कब्रों से निकल करके आ गए नमाज पढ़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। फिर आसमान पर गए, पहला आसमान, अजीब अजीब चीजें देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये अजीब अजीब चीजें देखते हुए जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इसी शक्ल में देखा, लेकिन अब जो है ना वो आदत हो चुकी थी अजीब अजीब चीजें देखने की, तो उधर बेहोश नहीं हुए। यहां जो है वो चूंकि आदत नहीं बनी हुई थी, एकदम से जो देखा ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 600 बाजुओं के साथ पूरे होराइजन को फिल किए हुए, तो बर्दाश्त नहीं कर सके और बेहोश हो गए, ठीक है। तो अब जब बेहोश हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहोश होकर गिर पड़े, तो इस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम बसूरत बशर होकर के आपके पास तस्कीन के लिए उतर आए, ठीक है, जिसका आगे जिक्र है। कजाफिल जलालैन, जलालैन जो है वो बहुत मशहूर तफसीर एक है। हासिल ये कि वो फरिश्ता अव्वल सूरत असलिया में उफुक आला पर नमूदार हुआ, फिर जब आप बेहोश हो गए तो वो फरिश्ता आप के नजदीक आया, फिर और नजदीक आया, सो कुर्ब की वजह से दो कमानों के बराबर फासला रह गया, ठीक है, यानी दो तीर कमाने, जो बो एंड एरो अगर आपने देखा हो तो तीर, तो खैर यहाँ पे तीर का जिक्र नहीं है, यहाँ सिर्फ कमान का जिक्र है, ठीक है। तो दो कमानों के बराबर फैसला रह गया, बराबर फासला रह गया, बल्कि गायत कुर्ब की वजह से, यानी इतना ज्यादा कुर्ब हुआ कि गायत कुर्ब की वजह से और भी कम फासला रह गया, ठीक है। मतलब दो कमानों का ये, अच्छा, मतलब दो कमानों का जो है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्लास का टाइम ख़त्म हो गया और आपकी दूसरी क्लास शुरू होनी है, तो यहाँ तक जो है ना वो हम आज की क्लास रोकते हैं। अगेन, शुरू में भी आपको बताया था कि ये काफ़ी दकीक नुकात हैं जो कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने इस आयात की तफ़सीर में बयान किए हैं, तो इस वजह से समझने और समझाने में मुश्किल हुई होगी, मतलब समझाने में तो इस हादिस को मुश्किल हो रही थी लेकिन आपको समझने में मुश्किल हुई होगी। लेकिन चूंकि कुरान तो सब कुछ ही है और हमने कुरान की क्लास के अंदर जो है वो कोशिश करनी है कि हम जितना ज़्यादा समझ सकें उतना कोशिश करें, इस वजह से हमने इसको स्किप करके जो है वो बिल्कुल आगे नहीं पहुँच गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल वगैरह है तो वो आप पूछ लिया करें, ठीक है, हो सकता है सवाल करने से फ़ायदा बहुत होता है कि एक तो ये कि बात बेहतर समझ में आ जाती है, दूसरा ये कि आपके सवाल करने की वजह से ना बहुत से ऐसे लोगों का भी फायदा हो जाता है कि जिनको बात नहीं समझ में आ रही थी लेकिन आपके सवाल करने की वजह से फिर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बरकत डाल दी कि उनके भी फिर बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो सवाल करने वाला होता है ना तो उसको फिर बहुत ज़्यादा फायदा होता है, अपनी भी समझ में बात आ जाती है और दूसरों के भी समझने का जो है ना वो जरिया बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से सवाल करने से जो है वो बिल्कुल भी शायबे ना करें, घबराए ना, सवाल कर लिया करें। बहरहाल, यहाँ पे हम अपनी तफ़सीर क्लास ख़त्म करते हैं। आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।